ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी मानवता को लाभ सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उन्होंने एआई मॉडल से जुड़े अंतर्निहित पूर्वाग्रहों से संबंधित चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई स्थापित किए जाने के निर्णय के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बधाई दी। उन्होंने उत्तरदायी और समावेशी एआई शासन आगे बढ़ाने में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने एक प्रमुख घोषणा में कहा कि भारत अगले एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए वैश्विक साझेदारी और समावेशी बनाने का भी आह्वान किया, जिससे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई के भविष्य की कुंजी मशीनें नहीं बल्कि मानवता है। प्रधानमंत्री ने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कारिस ने रेखांकित किया कि भारत और एस्टोनिया के बीच प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध लोकतंत्र, विधि सम्मत शासन, स्वतंत्रता तथा बहुलतावाद के मूल्यों के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने एस्टोनियाई सरकार और कंपनियों को डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। पेरिस में कल भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्थिर और पूर्वानुमानित नीति पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारत सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के रास्ते पर चलते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यह जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने फ्रांस के निजी क्षेत्र को भारत आने का निमंत्रण दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की परिपक्वता के कारण व्यापार की भूमिका में विस्तार हो रहा है। पेरिस में कल शाम 14वें भारत फ्रांस मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच के उद्घाटन के सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और फ्रांस स्वतंत्र विचारधाराओं की परंपरा वाले दो राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंध विश्वास संचालित और मूल्यों पर आधारित हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर आज राजधानी में अवकाश की घोषणा की है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लैम रिसर्च ने भारत में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। श्री वैष्णव ने इसे भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक और उल्लेखनीय घटना बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेमीकंडक्टर भविष्य दृष्टि के प्रति भरोसे की पुष्टि हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस समय यूनानी पद्धति में शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल और औषधि निर्माण के क्षेत्र में भारत का दुनिया में अग्रणी स्थान है। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। संसदीय समिति ने सर्दियों में फसल अवशेष पराली जलाने की घटना को हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश की है। राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समिति ने कल पेश अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि धान अवशेषों की मात्रा की प्रति इकाई मूल्य की समीक्षा होनी चाहिए और खरीफ फसल में पहले सालाना आधार पर इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास ने यदि शनिवार दोपहर को इसराइली बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में पहले ही 2-0 की निर्णायक बढ़त ले चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।